فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بس جب تم قرآن پڑھو نا، یعنی قرآن پڑھنے لگے آپ، تو کیا کریں؟ ایک کام ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ یہ کام کر لیا کرو، کیا؟ پناہ مانگ لو اللہ کی. کس سے؟ شیطان مردود سے. پناہ کب لی جاتی ہے؟ جب انسان خطرے میں ہوتا ہے تو وہ کسی سٹرونگ کے پاس پناہ کے لیے چلا جاتا ہے کہ یہ مجھے بچا لے کسی خطرے سے، جو بھی خطرہ ہے. اب یہاں پہ خطرہ کون ہے؟ شیطان. شیطان کیسے خطرہ ہے؟ نہ وہ آپ کو مارتا ہے، نہ پیٹتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے. کیا کرتا ہے پھر؟ وہ وسوسے ڈالتا ہے، وسواس انسان کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ طرح طرح کے، آپ دیکھیں، آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، کبھی کوئی خیال آ رہا ہے، کبھی کوئی خیال آ رہا ہے، کبھی آپ چیٹ میں چلے جاتے ہیں، مجھ سے ٹیکسٹنگ شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں 5-10 منٹ کی ٹاک ختم بھی ہو گئی، آپ کہیں اور ہی پہنچے ہوئے تھے. تو یہ کیا، کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. اس لیے دل سے جب بھی قرآن کی مجلس میں بیٹھنے لگیں، قرآن پڑھنے لگیں، تو کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، تیری پناہ لیتی ہوں. کس سے؟ اس شیطان مردود سے جو پیچھے پڑا ہوا ہے. اور خاص طور پہ یہاں پہ کس وقت کہا گیا؟ باقی کاموں میں بھی جو نیکی کا کوئی کام ہے، جیسے آپ نماز میں جب قرات شروع کرتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے قرات، سورہ فاتحہ سے پہلے ہی کیا فرما دیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. کیا مطلب؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جو سننے والا ہے، سمیع ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے. کس سے؟ شیطان مردود سے، اس کے شر سے، من حمزی ہی، اس کے خطرے سے، ونفخ ہی، اور اس کی پھونکوں سے، ونفتی ہی، اور اس کے وسواس سے. وہ پھونکے مارتا ہے نا دل پہ، اپنی تھوتنی رکھ کے، وہ جس طرح پگ کی ہوتی ہے اس طرح وہ اس کی تھوتنی ہوتی ہے، رکھ کے اور اس سے پھونکے مارتا ہے دل پہ، وسوسے ڈالتا ہے. تو جو انسان قرآن کی طرف آنے لگتا ہے، یہ شیطان مردود اس کو چھوڑتا نہیں. اب دیکھیں، خاص طور پہ باقی جگہ پہ آپ نماز میں بھی جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تب بھی یہی اس کا حال. تو اس کو یاد کر لیں اس دعا کو، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہی، یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے نماز میں یہی دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرتے تھے. ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑ لیں، اس کی پناہ میں آ جائیں، کیونکہ جو قرآن ہے نا، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے شیطان. کیوں اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ جو انسان قرآن سے جڑ جائے، وہ بس سمجھ لے جنت کا راستہ اس نے پکڑ لیا، اس کو جنت کا راستہ پتہ چل گیا، وہ جنت کے راستے پہ چلنا شروع ہو گیا. اور اس مردود نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ میں سب کو، بنی آدم یعنی آدم کی ساری اولاد کو، جہنم میں لے جاؤں گا، میں اپنے پیچھے ان کو لے کر جاؤں گا جہنم میں. تو وہ تو نہیں چاہتا کہ آپ کو جنت کا راستہ پتا چلے. یہ قرآن جنت کا راستہ ہے. ہاں، اس پہ چلنا یا نہیں چلنا وہ آپ کا اپنا فیل ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اس پہ، کوئی لوگ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا، بھائی تو قرآن تو آپ کو راستہ دکھا رہا ہے نا، ہدایت ہے، ہدایت کا پیغام ہے، آپ کو راستہ دکھاتا ہے. اب آگے کوئی اس کو پڑھ کے بھی نہیں چل رہا، تو اس کے اندر قرآن کا تو قصور نہیں ہے، نہ قرآن کی کلاسز کا قصور ہے. اور کوئی ہو سکتا ہے وہ بالکل ہی ڈی ٹریک ہو جاتا، کوئی ہو سکتا ہے بالکل ہی بھٹک جاتا، لیکن چلو تھوڑا بہت جو بھی وہ کر رہا ہے، وہ اس قرآن کی بدولت کر رہا ہے، اس کے سمجھنے کی وجہ سے، اس کو سیکھنے کی وجہ سے کر رہا ہے، اس چیز کو تو اپریشیٹ کر لیں. فوراً تانا دے دیں گے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس قرآن کی طرف کوئی آ گیا نا، اس کو پیغمبر بن جانا چاہیے. نہیں، وہ بھی انسان ہی ہے، وہ پتہ نہیں اپنی طرف سے کتنی ایفرٹ کر رہا ہو، کتنی کوشش کر رہا ہو. مت کسی کو تانا دیا کرے، کیا ہو گیا اس کو، دیکھو یہ قرآن والے تو ایسے، قرآن والے تو ویسے، قرآن والے کیا فائدہ اس کو قرآن پڑھنے کا؟ فائدہ ہے، اور ضرور فائدہ ہے، اور ہو سکتا ہے آج نہ فائدہ ہو کل ہو جائے، کل نہ ہو پرسوں ہو جائے. اور ہو سکتا ہے جو آج وہ تھوڑا بہت کر رہا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے ہے. ہو سکتا ہے وہ ورسٹ پہ نہیں چلا گیا اس لیے کہ قرآن نے اس کو تھاما ہو. तो कभी इसको बिलिटल ना करें, कभी इसको हकीर ना समझें, इसके पढ़ने को, इसके सीखने को बेफायदा ना समझें और लोगों को इस पे ताने ना दें। तो जब कुरान की तरफ इंसान आता है ना, तो शैतान उसको इतने वसवसे डालता है। आप देखें ना, खुद सोचें कि ये ऐसा क्यों है कि जब भी आप किसी को कुरान की तरफ बुलाते हैं तो वो कहता है, नहीं जी मेरे काम बहुत है, मेरे पास टाइम नहीं है जी, क्या करें, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरी तो जिंदगी इतनी मसरूफ है। ये कौन डालता है? या उस वक्त आपकी बात से कन्विंस हो भी जाए, फिर घर जाके फिर उसको लगता है, हाय मैं तो फंसी गई, नहीं मैं कमिटमेंट नहीं कर सकती। बस इस तरह से है कि कमिटमेंट नहीं कर सकती का मतलब ये है कि कमिटेड नहीं हो सकती। एक्चुअली कमिटमेंट इज कमिटेड होना, कि आप लग के करेंगे ये काम, नहीं, ये नहीं मैं कर सकती। तो जॉब तो आप बड़ी कमिटेड होके करते हैं, घर के काम भी कमिटेड होके करते हैं, और भी जो भी आपके काम है बड़ी कमिटमेंट है। आप बिल देते हैं, आप टैक्स देते हैं, कमिटेड हैं या नहीं? हर महीने के बाद बिल देते हैं ना, हर साल में टैक्स देते हैं ना, आप घर के काम भी रोज करते हैं ना, आप जॉब भी रोज जाते हैं ना। क्यों नहीं आप जॉब वालों को जाके कह देते जी मैं आप कमिटमेंट नहीं कर सकती, जब दिल करेगा आऊंगी, जब दिल करेगा नहीं आऊंगी। ये तो कोई भी आपको हायर नहीं करेगा। कुरान के बारे में ऐसा क्यों है कि हम कमिटमेंट से डरते हैं? क्या कोई आपको पकड़ के कोई बांध के रख रहा है? क्या क्या इतनी मुश्किल हो रही है इसमें कि अक्सर लोगों की जुबान से ये हमने कमिटमेंट नहीं करनी, यानी वो तो अपने आप को इधर बांधना ही नहीं चाहते, टिक के काम करना ही नहीं चाहते। क्यों? इसलिए कि शैतान के वसवास है। शैतान इतने कामों को हावी कर देता है दिमाग पे इंसान के, वो भी काम है, वो भी काम है, उसको इतना खौफजदा करता है कि अगर तूने कुरान शुरू कर दिया ना, तेरे तो सारे ही काम रह जाने। ऐसे लगता है जैसे कुरान ना पढ़ना हो गया, दुनिया से ये हट जाएगा और उसको बस पता नहीं किसी और ही दुनिया में चले जाना। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने लोग कुरान पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं या उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपने घर भी चला रहे हैं, अपने बच्चे भी देख रहे हैं, अपनी जॉब भी कर रहे हैं, अपने सब कुछ कर रहे हैं, वो भी खा पी रहे हैं, हवा नहीं खाते वो भी खाना खाते हैं, वो भी घरों में रहते हैं, वो भी आपकी तरह के इंसान ही है। लेकिन शैतान ऐसे वसवसे डालता है, वो ऐसी बातें इंसान को करता है कि बंदा खौफजदा इतना ज्यादा हो जाता है, उसको लगता है कि कुरान मेरा सारा ही टाइम खा जाएगा, वो मेरी जिंदगी में कोई टाइम ही नहीं बचेगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकूंगी। ये कहां से ख्याल आते हैं? ये कहां से ये खौफजदा करता है लोगों को? ये वसवसे किधर से आए? ये उसकी तरफ से आए जो बिन देखा अनदेखा अनसीन आपका एक दुश्मन है, जिसको आप देख नहीं सकते। अब अनसीन को से बचने का क्या तरीका? जब हमारे सामने ही नहीं है तो हम उससे कैसे मुकाबला करें? उससे सिर्फ एक बात से आप बच सकते हैं कि आप अल्लाह की पनाह ले लें, बस, वरना नहीं ये आपको छोड़ेगा, वरना ये कोई इंसान इससे बच सकता ही नहीं। को जाहिर है जिसको आप देख ही नहीं सकते उससे बचेंगे कैसे? ये तो पीछे पड़ा हुआ और नॉन स्टॉप इंसान के पीछे लगा रहता है। आप आ भी जाएंगे ना, तब भी आपको वसवसे डाल डाल के आपको इससे हटाने की कोशिश करे। देखा कुरान पढ़ रहे थे ना तो ये हुआ, देखा कुरान की वजह से ये हुआ। तो कुरान का तो सबसे ज्यादा ये दुश्मन है। ठीक है, आप और चीजों के अंदर भी औजु बिल्ला पढ़ सकते हैं, तो आप किसी गुनाह है, कोई गुनाह का ख्याल आया है तो फौरन आपने कहा औजु बिल्ला मिन शैतान रजीम, आपको कोई ऐसी चीज लगता है कि शैतान मेरे मुझे ये वसवास डाल रहा है, नमाज में कोई वसवसा आ रहा है, तो आप औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम पर पढ़ के थुतकारे बाएं तरफ, आप कोई ऐसी चीज होती तो आप औज़ु बिल्लाह पढ़ सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे खास तौर पे कुरान की बात आई है और इसे आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सी चीज है जिसके पीछे वो सबसे ज्यादा पड़ा होता। कुरान उसको पता है कि इसने समझ लिया ना तो बस फिर इसकी जिंदगी बदल जानी है, ये इसके दिल पे असर कर देगा, फिर इसका अमल बदलना शुरू हो जाएगा, फिर इसको सबसे ज्यादा चाहत ये होगी कि मैं अपने अल्लाह को राजी कर लूं, फिर गुनाहों के मेरे जो ट्रैप हैं उसके अंदर आने से ये मेरे हाथ से निकल जाएगा, उसमें नहीं आएगा, मेरे आसानी से मेरा शिकार नहीं बनेगा। जब कुरान से इंसान दूर होता है ना, बड़े आसानी से शैतान का शिकार हो जाता है। कुरान के करीब आते हैं तो मुश्किल होती है उसको फांसना, ऐसे नहीं कि उसका फिर भी वो हट जाता है, हटेगा फिर भी नहीं, चाहे आप कितने भी कुरान पढ़ लें, कितने भी नेक हो जाएं, लेकिन सबसे पहले वो ये चाहता है ये कुरान ना खोले। कुरान खोल लिया तो बस ऐसे ऐसे पढ़ ले, इसको समझे ना, फिर वो वार करता है कि इसको समझे ना। तो मैं तो इतना कुरान पढ़ती हूँ, मैंने तो इतने कुरान खत्म कर लिए, मुझे तो जरूरत नहीं कुछ और की। हम तो ऑलरेडी इतनी नेकी करते हैं, वो हमें सारा पता है, हमें और क्या बताएगा कुरान। इस तरह की ये बातें कौन बता रहा है? शैतान, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप समझे। उसको पता है ये की है, उसको पता है ये रास्ता है जन्नत का, ये इस रास्ते को पहचान गया तो दौड़ना ना शुरू हो जाए कहीं इस रास्ते पे, जन्नत में ना पहुंच जाए। वो मर्दूद इसी चीज का तो दुश्मन है, ये जन्नत का रास्ता हमारे लिए खो जाए, हमें पता ही ना चले, गुम कर दे हमारे लिए। फिर अगर समझ भी लिया तो अब अमल के रास्ते में खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा अमल बड़ा मुश्किल है, समझ भी लिया ना बस इतना काफी है, क्लासें लेनी काफी है, इतना तो हम कर रहे हैं, अब अमल आगे इतना मुश्किल बना के दिखा नहीं, अगर अमल किया तो लोग छोड़ देंगे, आए लोग क्या कहेंगे, फिर वो बातें बनाएंगे, फिर वो तुम्हें छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, तुम्हारी दोस्तें तुम्हारे करीब नहीं आएंगी, बस पढ़ लिया इतना ही काफी है, अगर इतने नेक तो हम हो गए। तो ये सारी चीजें ये शैतान की है, तो समझ आ गई आपको कि पहले खोलने नहीं देता, बोल लिया तो फिर बस ऐसे ऐसे पढ़ लो कि समझ ही ना आए कि क्या पढ़ रहे हैं, और अगर समझ भी लिया, समझने की तरफ आ गए, तो फिर उससे आगे क्या अमल ना हो जाए, किसी और को ना बता दे। ठीक है, तो तिलावते कुरान, समझना, इसके ऊपर अमल करना, इसके लिए अल्लाह ताला की मजबूत पनाह में आ जाए ताकि शैतान का वार ना चल सके। वो अल्लाह ताला बचा सकता है, वो ही ताकत रखता है कि हमें इसी शर से महफूज रख सके, हमारे अपने अंदर ताकत नहीं है। इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अल्लदीना आमनू अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अब ये 99 और 100 आयत एक ही बात है, एक में बताया गया कि शैतान का वार किन लोगों पे नहीं चलता, 100 में बताया गया कि शैतान का वार किन में चलता है। ठीक है, किन पे शैतान का वार नहीं चलता? उन लोगों पे जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं, यानी जिसका ईमान अल्लाह पे मजबूत है ना, शैतान उसके ऊपर वसवसे डालेगा, ऐसा नहीं है कि ईमान वालों पे वसवसे नहीं डालता, डालेगा, लेकिन जब उसका भरोसा अल्लाह पे होता है ना, तो ये गलबा नहीं पा सकता उसके ऊपर, पूरे तौर पे हावी नहीं हो सकता उसके ऊपर, जोर लगाता है लेकिन हावी नहीं हो पाता। देखिए, इसका मतलब है कि हमें अपना ईमान मजबूत करने की जरूरत है, जितना भी ईमान मजबूत होगा उतना ही शैतान का गलबा नहीं हो सकेगा, और जितना अल्लाह पे भरोसा कि अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल, अल्लाह ताला पे यकीन कि मेरा रब है मेरे लिए, और अऊजुबिल्लाह को भी पढ़े तो यकीन के साथ पढ़े, फिर आप देखेंगे कि शैतान का जोर नहीं चलता। जो लोग भी कहते हैं ना हमारे घर में आसेब का साया है, असरात हैं, ये हैं, उनका इलाज क्या है? यही कुरान है, ये कुरान है, कुरान का जितना पढ़ेंगे ईमान बढ़ेगा, बावजू हो के पूरे यकीन के साथ कहीं से भी कुरान पढ़े, ये शैतान को हमलावर होने से रोक देगा, नुकसान नहीं कर सकेगा। जाए तो, और अल्लाह के ऊपर भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, ये आपको फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो जी, अल्लाह पर भरोसा जो नहीं करता ना, वो हर वक्त परेशान रहता है, गमगीन रहता है, हर वक्त फिक्र में लगा रहता है। जो अल्लाह पे भरोसा कर लेता है, उसका दिल पुरसकून हो जाता है। तवक्कुल करना सीखना है हमने। दिल को अल्लाह ताला पे यकीन दिलाना सीखना। इंसान का दिल थम जाता है जब वो भरोसा कर लेता है अल्लाह ताला। देखें कैसे खुद हमारी काउंसलिंग कर रहा है ना, कि तुम्हें ये शैतान वसवसे डालता है, डराता है और डिट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ईमान को मजबूत कर लो, अगर अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, मैं उसकी पनाह ले लूं, तो ये खुद ही हार जाएगा। देखिए हजरत उमर को देखिए, ईमान मजबूत था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर जहां से गुजरता है शैतान रास्ता बदल लेता। क्या चीज थी हजरत उमर में, स्ट्रांग तो थे फिजिकली, लेकिन और क्या चीज थी, ईमान मजबूत था। आप फिजिकली कितने भी कमजोर हैं, अगर आपका ईमान मजबूत है ना, तो इसका वार उतना ही कम चल सकता है जितना हम ईमान मजबूत करेंगे। ईमान मजबूत भी तो कुरान से होता है ना। तो अब उसका जोर चलता किस पे, इन्नमा सुल्तानहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु, बेशक उसका जोर उन लोगों पर चलता है जो दोस्ती करते हैं उससे, जो उसको दोस्त बनाते हैं, जो उसकी, यहाँ पे यतवल्लौना से मतलब है जो उसकी इताअत करते हैं, उसका कहना सुनते हैं। क्योंकि क़यामत के दिन वो कहेगा कि मेरा को तुम्हारे पर कोई जोर नहीं था, मैं तो सिर्फ वसवसा डालता था और तुमने मेरी बात सुन ली, मैंने तुम्हें दावत दी, तुमने कबूल कर ली। तो जब वो दावत दे, जब वो किसी वसवसे को डाले, इंसान जो मोमिन होता है ना, वो पहचान जाता है कि ये शैतान की तरफ से है, और उसे जब पहचान जाता है तो फिर वो उसकी बात में नहीं आता। ठीक है, वल्लदीना हम, और वो लोग भी जिन, और कौन से लोग हैं जिन पे उसका जोर चलता है, जो शिर्क करने वाले होते हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, उनके ऊपर भी उसका जोर चलता है शैतान का। तो शैतान का जोर किन दो पे चलता है, जो उसकी इताअत मान करें, जो उसका, जाहिर है जो उसकी बात मानेंगे उसके ऊपर उसका जोर चलेगा, जो उसकी बात ही नहीं सुनेंगे तो उसके ऊपर कैसे जोर चलाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब ये वसवास आए बार बार, इंसान को एक ही ख्याल आ रहा है, देखो उसने तुम्हारे साथ ऐसे किया, देखा उसने ये कर दिया, देखा उसने वो कर दिया, तो समझ जाएं कि ये शैतान की तरफ से, ये जो वसवसा होता है ना, ये बार बार आता है, बार बार पलट पलट के आता है, तो उस पे चलना नहीं है, फिर औज़ु बिल्ला पढ़नी है, और औज़ु बिल्ला आपसे तो समझ के पढ़नी है ना, जब कुरान खोलें तो समझ के पढ़ें, अल्लाह मुझे पनाह दे दे इस शैतान से, ताकि बीच में जब आप पढ़ रहे हो तो आपको बहकाए नहीं, ठीक है, आप वसवास ना डालें। और अच्छा, एक दो बातें जो ये पीछे रह गई हयाते तैयबा के हवाले से, वो भी थोड़ी सी आपको बता दूं, कि इंसान की जो जिंदगी है, इसमें फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो इंसान जिसको तीन चीजें मिल गई ना, उसको सब कुछ मिल गया, उसको दुनिया की सारी दौलत मिल गई, सारी दौलत सिमट के उसके पास आ गई। वो आगे भी हम उसके ऊपर बात करेंगे एंड की आयात में, मगर हयाते तय्यबा से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सोचे कि इंसान को हयाते तय्यबा मिल गई जिस वक्त के उसको फरमाया, उसको पेट पालने का टुकड़ा मुयस्सर हो गया, और अल्लाह उसके दिल को कनात से भर दे, और उसने इस्लाम की राह देख ली, जिसने इस्लाम की राह जिसको दिखा दी गई, जिसको पेट पालने का टुकड़ा मुयस्सर हो गया, यानी पेट भरने के लिए जितना उसको चाहिए था, और अल्लाह ताला ने उसको, उसके दिल को कनात से भर दिया, उसने निजात पा ली, फरमाया उसने निजात पा ली, ये तिर्मिज़ी की हदीस है। ठीक है, तो ये भी हयात तय्यबा है, उसको यह हयात तय्यबा मिल गई। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तिलावत सुने।
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون